यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 15वें अध्याय श्लोक क्रमांक 5 पर आधारित है, जो कि 17 फरवरी 1994 में दिल्ली में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा
गोपी जाना बाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवत फर्स्ट कैंट चैप्टर 15 टेक्स्ट 5
अर्जुनवाच
वंचितोऽहं महाराज
वंचितोऽहं महाराज
इस अध्याय के इन श्लोकों में हम क्या देख रहे हैं कि अर्जुन जो है वो बहुत शोक में है। वो भगवान से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं रहना चाहते थे। तो इन श्लोकों में हम देख रहे हैं कि अर्जुन के हृदय में बहुत शोक है, वो बहुत दुखी हो रहे इस कारण कि भगवान इस जगत को छोड़कर अपने दिव्य धाम में लौट गए हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान ने अपने धनिष्ठ मित्र के रूप में स्वीकार किया था। जो अर्जुन का संबंध था भगवान से बड़ा प्रिय संबंध था, और जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं कौन से पति जाने ही न में भक्त प्रदर्शति। हे अर्जुन, तुम सारे विश्व को ये बताओ कि मेरा जो भक्त है उसकी मैं हमेशा रक्षा करता हूं। और इस श्लोक में और तात्पर्य में इस श्लोक में अर्जुन ये स्वीकार करते हैं कि जो शक्ति भी उनके पास थी, इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक ही चकित करने वाला था, ये जो प्राप्त हुआ था वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे भक्त को ये सारे विश्व का बताओ कि मेरा जो भक्त उसकी मैं रक्षा हमेशा ही करता हूं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो भी योग्यता जो भी शक्ति व्यक्ति में प्राप्त होती है वो शक्ति और ऐश्वर्य का सदुपयोग जब होता है जहां उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि जो ऐश्वर्य जो खूबसूरती जो शक्ति जो बुद्धि जो गुण उनके पास है ये भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसीलिए उसका सदुपयोग यह है कि उसे हम भगवान के सेवा में उपयोग करें। पर आज हम समाज में क्या देखते हैं, आज समाज में ये देखते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास ऐश्वर्य है या गुण है या बुद्धि है या किसी प्रकार का भी गुण हो, वो ये नहीं सोचते कि इसका सदुपयोग होगा अगर हम इसे भगवान की सेवा में लगाएं। वो यही सोचते हैं कि ये सब हमने प्राप्त किया है हमारे परिश्रम के कारण, तो हमें इन सब चीजों का उपयोग करना चाहिए हमारे भौतिक सुख के लिए। और जो भक्त है वो ये समझता है भोक्ता राम यज्ञ तपोसम सर्वलोक महेश हो रहा कि असल भोक्ता कौन है, वो असल भोक्ता ये पर केवल परम भगवान ही है। तो भक्त ये जानता है कि जो भी शक्ति है जो भी गुण है ये परम भगवान के द्वारा ही आ रहा है, और भगवान जब अवतारित होते हैं वो अपने नित्य पार्षदों को भी ये दिव्य शक्ति देते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। और जब ये उद्देश्य पूरा हो जाता है, जैसे कि यहां कहा गया है, उन पार्षदों से भी वो जो शक्ति है वापस ले लेते हैं। तो प्रभुपा जी इस विषय में ही तात्पर्य में समझाते हैं कि जब भगवान अपने पार्षदों से शक्ति वापस ले सकते हैं तो ये भौतिक समाज के जो कितने भी प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनसे क्यों नहीं ये शक्ति वापस ले सकते। जैसे कि जो कई नास्तिक व्यक्ति हैं जो बड़े शक्तिशाली हैं वो कहते हैं कि हम भगवान में नहीं विश्वास करते इत्यादि, वो अपनी शक्ति का बड़ा नाच घमंड रखते हैं, तो उनको भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। चाहे कितनी भी शक्ति हो, कितने भी पार्को को डिक्टेटर बन जाए, कितना भी धनी व्यक्ति बन जाए, रोग पीड़ा मृत्यु के सामने तो सबको झुकना ही पड़ता है। प्रकृति के जो कष्ट हैं उनसे तो कोई बच नहीं सकता। कि जैसे आपने सुना होगा कि लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, केवल 30 सेकंड के लिए, और 30 सेकंड में उनका 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। 30 बिलियन डॉलर अंदाजा लगा। भारत में जब वो महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आया था रोचा, तो सबने कहा कि यहां सरकार के पास हथियार वगैरह वो सुविधा नहीं थी ये बताने के लिए कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो मैंने कहा मैं तो सब टेक्नोलॉजी उनके पास, टेक्नोलॉजी की तो किसी रूप की कमी नहीं है, वहां तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर आप दिल्ली में कनॉट प्लेस में मोटर चला रहे हो तो उनको वॉशिंगटन में पता लग जाएगा आपकी मोटर का नंबर प्लेट क्या है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो ये सब टेक्नोलॉजी होने के कारण भी क्या वो लोग पिप्पे को रोक सके लॉस एंजलिस में? नहीं रोक सके। और 30 सेकंड में 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। खैर हमने उदाहरण किस विषय में दिया था ये बताने के लिए कि पास ऐश्वर्य है, शक्ति है वगैरह, इसका वो बड़ा नाच रखते हैं, घमंड रखते हैं, पर प्रकृति के सामने तो सबको झुकना ही पड़ता है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ये समझते हैं क्या कि ये जो शक्ति है, ये जो ऐश्वर्य है, ये परम भगवान से आ रहा है, तो इसलिए हमें इसका उपयोग भी करना चाहिए। किस लिए? भगवान की सेवा में। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि भगवान को सब याद रहता है कि उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, अपूर्णता नहीं है। भगवद गीता में एक जब अर्जुन ने भगवान से सुना कि ये उपदेश उन्होंने विवास्वान को दिया था, तो अर्जुन ने हमारी भलाई के लिए एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि आपने ये उपदेश सबसे पहले विवास्वान को दिया जब उनकी आयु आपसे अधिक है। तो भगवान ने उत्तर में कहा कि बहुत बहुत बार तुमने और मैंने दोनों ने जन्म लिया है, पर मैं सबको याद कर सकता हूं पर तुम उसे याद नहीं कर सकते। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि साधारण प्राणी मात्र में और परम भगवान में अंतर है। साधारण प्राणी मात्र में चार प्रकार के दोष है। इस कारण पिछले जन्म की तो बात छोड़ो, हम अगर आपसे पूछे कि आप एक हफ्ते पहले क्या कर रहे थे इसी समय, शायद आप ठीक रूप से उत्तर दे पाओगे। क्योंकि साधारण प्राणी मात्र में चार प्रकार के दोष हैं, चलने की इच्छा है, वो गलती करता है, इंद्रियां अपूर्ण है, ब्रह्म में रहता है, तो इस कारण उसके पास ना तो जो भी ज्ञान है अधूरा रहता है, पर परम भगवान के द्वारा ही हम असली ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन जो थे भगवान के बहुत ही प्रिय मित्र थे, भक्त थे। भगवान के जो भक्त हैं वो एक क्षण के लिए भी भगवान से जुदा नहीं रहना चाहते। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है मछली जल के बाहर एक क्षण के लिए भी नहीं रहना चाहती, तो भगवान के जो भक्त हैं वो बिल्कुल भगवान से जुदा नहीं रहना चाहते। तो अर्जुन को इसलिए बहुत ही शोक हो रहा था, दुख हो रहा था क्या कि भगवान अपने दिव्य धाम में चले गए हैं, अभी हम उनके बिना कैसे रहेंगे, क्योंकि भगवान के भक्त सदा भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं। तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि हम भक्त लोग क्या करें। हमारा तो ये भाग्य नहीं है कि भगवान की संगत हमें प्राप्त हो रही है, जैसे कि अर्जुन को प्राप्त हुई थी। तो आप देखोगे कि इस भागवत धर्म में आगे जाकर कि अर्जुन ने बाद में भगवत गीता के उपदेश का स्मरण आरंभ किया, और जब उन्होंने भगवत गीता का जो उपदेश भगवान ने दिया था उसका स्मरण आरंभ किया, तो उनके जो शोक था, जो दुख था, वो आस्ते आस्ते चले गए। और फिर से वो तो क्योंकि भगवान के दिव्य नाम में और उनमें कुछ अंतर नहीं है, भगवान की शिक्षा में और उनमें कुछ अंतर नहीं है, जब हम उनके दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं या उनकी शिक्षा का स्मरण करते हैं, तो हम फिर से भगवान की संगत को अनुभव कर सकते हैं, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान की संगत का तो अनुभव किया। इसीलिए कहा गया है भगवद गीता के अनेक श्लोकों के द्वारा कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को जीतने का प्रयास करें। अगर हमने मन को वश में नहीं लाए, अगर हम मन को नहीं जीत पाए, तो अगर हम सारे विश्व को भी प्राप्त कर लें पर मन को नहीं जीते, तो हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। इसलिए कहा गया है गीता में, मन मन बाबा मत भक्त मध्यादि मन नमस्कार, मन के द्वारा मेरा प्रणाम करो, मेरा स्मरण करो, मन को जीतो। भगवान छठे अध्याय में कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया वो शांत रहेगा, पर जिसने मन को नहीं जीता वो सारे विश्व के धन कभी प्राप्त कर ले और कभी शांत नहीं होगा। जैसे कि एक चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में कथा है कि एक समय जब नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु जी को पहले निमाई पंडित बुलाते थे, हाँ, एक तो बड़े बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे और नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, तो उनको नाम उनकी माता ने निमाई दिया था। और वो पंडित भी थे, क्यों? क्योंकि बहुत ही विद्वान थे, जितने भारत में उस समय संस्कृत के विद्वान थे सबको उन्होंने हरा दिया था। एक बहुत बड़ा विद्वान था कश्मीरी पंडित कश्मीर का, उसे भी हरा दिया था। तो सब उनको बहुत आदर देते थे। चैतन्य महाप्रभु जी सबको भक्तों को शिक्षा देते, संस्कृत पढ़ाते थे, जैसे कि आजकल सब अमेरिका में पढ़ने जाना चाहते हैं बिजनेस कॉलेज में, सब तरसते थे चैतन्य महाप्रभु जी से संस्कृत सीखने के। और फिर चैतन्य महाप्रभु जी निमाई पंडित के, जब निमाई पंडित उनका नाम था सन्यासी, उनसे पहले तो वो सबको संस्कृत पढ़ाकर भेजते थे घर घर जाकर प्रचार करो। तो नवद्वीप में एक भक्त था जिनका नाम था खोलाबेट श्रीदास, बहुत गरीब था, उसकी धोती भी एक ही धोती थी उनके पास, एक धोती में 12 छेद थे, और वो रहते थे एक झोपड़ी के मकान में जिसकी छत भी नहीं थी। अंदाजा लगा लो उनका क्या काम था, केले के पत्तों से प्याले बनाते थे जो लोग खरीदते थे गंगा नदी की उपासना के लिए, और उसके जो छोटी थी आमदन का जो आधा हिस्सा होता था वो खर्चते थे गंगा नदी की उपासना में। तो निमाई पंडित का उनसे एक खास स्नेह था, निमाई पंडित रोज उनके घर जाते थे और उनसे केले के प्याले, ये जो प्याले बनाते थे मुफ्त में ले लेते थे। वो कहते थे मैं तो इतना गरीब हूं, मैं कहां से दूं तुम्हें। ये जो खोला भाई श्रीदास थे वो सारी रात भगवान का कीर्तन करते थे और अपने कमरे में नाचते थे, तो उनके जो पड़ोसी वगैरह थे सब उनके दुश्मन बन गए थे। पर वो बहुत गरीब थे, कई बार निमाई पंडित उनको आकर छेड़ते थे, कहते थे देखो तुम तो कृष्णा की भक्ति कर रहे हो, तुम इतने गरीब हो, और तुम्हारे पड़ोसी वो सब दुर्गा की पूजा करते हैं, वो कितने धनी हैं, तो तुम भी दुर्गा की पूजा क्यों नहीं करते। तो वो कहते थे, उनको छेड़ते थे, क्या उनकी खास लीला थी। तो निमाई पंडित बार बार कोलाबेट श्रीधर के घर वगैरह जाते थे, तो कोलाबेट श्रीधर कहते थे उनको, मैं इतना गरीब आदमी हूं तो मुझे क्यों सुना रहे हो। तो निमाई पंडित उन्हें कहते थे, तुम गरीब नहीं हो,
तो बहुत ही धनी हो और तुम्हारा धन जो है वो छुपा हुआ है। देख मैं तुम्हारे धन को सारे विश्व में बताऊंगा कि तुम कितने धनी हो। असल उनके पास कोई भौतिक धन तो नहीं था, वो बिल्कुल संतुष्ट थे। उनके जो पड़ोसी इत्यादि थे वो तो यही तरह से थे और धन वगैरह कमाए, पर कौरव श्रीधर के पास एक ही धोती थी, 12 छेद थे उसमें, छत भी नहीं थी, घर में एक ही पुराना बर्तन था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ, तो उन दिनों में बंगाल में मुसलमान राजा थे, तो मुसलमान राजा से जब निमाय पंडित ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो लोगों ने मुसलमानों ने जाकर शिकायत की, तुम रोक तो ये जल्दी से, नहीं रोकोगे तो सभी कृष्णा के भक्त बन जाएंगे। जिन्होंने शिकायत की उन्होंने कहा कि हम भी फंस गए हैं इसमें, हमारे मुंह से भी कृष्णा शब्द बंद ही नहीं होता, इसमें क्या आकर्षण है हम खुद नहीं समझ सकते, जल्दी से कीर्तन मंडली बंद करवाओ। तो जब मुसलमान राजाओं ने कीर्तन कार्य वगैरह रोकने का प्रयास कर रहे थे तो निमाय पंडित ने और भी बड़े रूप से कीर्तन का आंदोलन पढ़ाया। तो एक दिन बहुत लंबा कीर्तन किया था निमाय पंडित ने तो उन्हें फिर प्यास लगी तो पानी पीने और किधर आए खुदा भाई श्रीधर जी, और वो ही जो एक टूटा हुआ बर्तन था उनके घर में उसी बर्तन से उन्होंने पानी पिया। तो जब खुदा भाई श्रीधर को पता लगा कि निमाय पंडित ने इस प्याले से पानी पिया तो उसको बहुत ही तो खैर, तो निमाय पंडित हमेशा कहते थे खुदा भाई श्रीधर तुम्हारे पास तो जो धन है किसी के पास नहीं है। तो एक दिन निमाय पंडित बड़े विद्वान थे, पर उस समय किसी को पता नहीं था कि परम भगवान के अवतार हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी का अवतारित हुए थे भक्त के रूप। तो एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर में जब निमाय पंडित ने अपने दिव्य रूप को प्रकट किया उनके 4 प्रिय भक्तों के सामने, हाँ अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के अवतार हैं पुंडरीक वाहिनी हरिदास ठाकुर और खोलावेश श्रीधर, खोलावेश श्रीधर से निमाय पंडित का इतना स्नेह था कि उन्होंने अपने भक्तों को बोला जाओ खुदा श्रीधर को ढूंढ के लाओ। तो किसी को तो उनका घर का पता भी नहीं पता था, पर ये पता था कि वो 24 घंटे निरंतर हरि का नाम करते रहते हैं। तो उनके जो साथी थे चैतन्य महाप्रभु जी के निमाय पंडित के सेवक जो उन्हें ढूंढने गए वो से हर घर के सामने जाके रुक कर देखते थे कौन हरि का नाम कर रहा है, तो उन्होंने खुद ही ढूंढ कर ले आए। तो निमाय पंडित ने अपने दिव्य रूप को प्रकट किया और उन्होंने अपने सब भक्तों से पूछा बोलो तुम्हें क्या क्या वरदान चाहिए। तो पहले तो उन्होंने अद्वैताचार्य से पूछा तुम्हें क्या वरदान चाहिए, और फिर अद्वैताचार्य ने कहा कि आप यह हरिनाम का वितरण कीजिए सबकी भलाई के लिए, क्योंकि अद्वैताचार्य की उपासना के कारण ही परम भगवान बाद में अवतारित हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो उन्होंने कहा कि आप हरिनाम का वितरण करो हर जगह, केवल उनको नहीं देना हरिनाम जिनके हृदय में जलन है आपके प्रति। तो फिर वो उन्होंने पूछा कुलवे श्रीधर से तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम्हें 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए, 8 प्रकार की योगिक सिद्धियां हैं जिनके द्वारा आप किसी पर भी बल कर सकते हो, यहां बैठे बैठे अपना हाथ फैलाकर किधर से भी पैसा उठा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। उन्हें कहा कि तुम्हें 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए, नहीं फिर समान ऐश्वर्य चाहिए, तुम्हें शिष्य वगैरह चाहिए, नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए बोलो क्या वरदान चाहिए। यहां निमाय पंडित भगवान अपना दिव्य रूप प्रकट करके अपने भक्त से पूछे तुम्हें क्या वरदान चाहिए, हा? योगिक सिद्धियां चाहिए, मेरे समान ऐश्वर्य चाहिए, धनी शिष्य चाहिए, क्या चाहिए बोलो मैं देने को तैयार हूं। तो बेटे श्रीधर ने क्या कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो कि मैं हमेशा भक्तों के संग में रहकर आपका गुणगान कर सकूं और हर जन्म में मुझे आपका साथ मिले निमाय पंडित के रूप में। हालांकि निमाय पंडित जाकर उनको सताते थे, छेड़ते थे, तंग करते थे, उनसे उनके केले के पत्तों की भीख मांगते थे, छीन लेते थे। तो वो कहते थे, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तुम्हें रोज कहां से दूं मुफ्त में, तो मुझे क्यों सताते, छोड़ दो अकेला। उन्होंने ये कहा कि मुझे ये वरदान चाहिए कि मुझे हमेशा आपकी संगत प्राप्त हो हर जन्म में। तो ये उदाहरण, ये थोड़ी लंबी कथा है, हमने संक्षेप में सुनाई है। तो ये उदाहरण हमने इसलिए दिया ये बताने के लिए कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाए, जो भगवान के दिव्य नामों को अपना ले, वो इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि जब उन्हें ये वरदान दिया जाए कि क्या सुविधा चाहिए, किस प्रकार के ऐश्वर्य चाहिए, वो इसको भी नहीं मानते। आप समझे? जैसे कि भागवत में एक और कथा है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज की सौतेली माँ ने उन्हें अपने पिता बताना पादा के गोद में बैठने से रोका। तो छोटे लड़के बच्चे थे, 5 साल की आयु थी, क्षत्रिया खून था। तो खैर वो जंगल में गए, मधुमन जंगल में भगवान को खोजने के लिए, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें कहा था, मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती, पर सुना जाता है भगवान दे सकते। तो उन्होंने पूछा, भगवान को कहाँ प्राप्त करेंगे? कहा कि जंगल में, सुना जाता है। तो जैसे वो निकल रहे थे अपने महल से, नारद मुनि जी वहां पहुंच गए। नारद मुनि जी ने उनकी परीक्षा लेने की इच्छा की। तो उन्होंने कहा पहले, अरे भाई, तुम्हारी सौतेली माँ तो तुम्हारे से खेल रही थी, तुम तो बच्चे हो, भगवान को ढूंढने कहाँ जाओगे छोटी उम्र में, जाओ खेलो तू। तो ध्रुव ने कहा कि अगर आप मेरा सहयोग दे सकते हो भगवान को खोजने में, तो मेरे से बात करो, नहीं तो मुझे जाने रहो जंगल की तरफ। तो जब नारद मुनि जी ने देखा ये गंभीर है, दृढ़ है भगवान को खोजने में, फिर उन्होंने उनको उपदेश दिया, क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र की रचना उच्चारण करो, भगवान का रूप बनाओ मिट्टी और जल के, हो जल को मिलाकर। तो ध्रुव महाराज जंगल में गए, भगवान का रूप बनाया, मंत्र का उच्चारण किया, फिर अंत में उन्हें भगवान का भगवान प्राप्त हुए, भगवान की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। तो भगवान ने उनसे पूछा कि ये बताओ क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तो ध्रुव ने कहा कि मैं तो इतना मूर्खों के पहले मैं टूटी हुई शीशों को खोज रहा था, अब तो मुझे असली हीरा प्राप्त हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो इतने संतुष्ट, इतनी संतुष्टता महसूस करते हैं दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, क्योंकि हृदय में यही भावना रहती है कि किसी न किसी प्रकार से वो सदा भगवान का स्मरण कर सकें, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर सकें। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी जो नर्मदा भक्ति का ज्ञान हमें देते हैं, नर्मदा भक्ति का ज्ञान देते हुए सबसे पहले क्या कहते हैं, शरणम कृष्णम विष्णु स्मरण। हमें इस प्रकार से इस जीवन को चलाना चाहिए कि आप भगवान के दिव्य नामों का शरणम कीर्तनम भी कर सकें और उनका विष्णु स्मरण भी कर सकें। जैसे अर्जुन जो है, जैसे उनको शोक पड़ा था भगवान ये पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम में लौटे हैं, फिर जैसे ही उन्होंने भगवान की शिक्षा का स्मरण आरंभ किया, उन्हें वही संतुष्टता महसूस हुई जैसे जब भगवान उनके साथ है। तो अगर हम श्रवणम कीर्तनम करेंगे सावधानी के साथ, तो फिर हम भगवान का विष्णु स्मरण भी कर पाएंगे, नहीं तो ये मन भटकते रहता है अनेक भौतिक विषयों में। इस मन में ये मन में अनेक प्रकार के भौतिक विचार रहते हैं, आज इतना प्राप्त हो गया है, कल इतना प्राप्त होना चाहिए, आज इसने हमारा अपमान किया है तो हमें कल इसका अपमान करना है, हमें आदर ठीक रूप से नहीं मिला, तो मन में तो अनेक भौतिक विचार है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं भगवत में कि जो हृदय है एक फोटो एल्बम के समान है। जैसे आप लोग घरों में जब एल्बम रखते हो गए तस्वीरें हैं बचपन की और रिश्तेदारों की वगैरह, तो उसी प्रकार हृदय में करोड़ों तस्वीरें हैं। फोटो एल्बम में तो 50, 100, 150 चिपका सकते हो, और आपके हृदय के फोटो है तो मैं तो लाखों 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 तस्वीरें रोज बढ़ते ही जाती हैं, है ना। और इस जीवन की तस्वीरें ही नहीं तो पूर्व जन्म के भी विचार रहते हैं, तो इसलिए ये जो हृदय में विचार है वो मन में आते हैं। तो मन को हमें शुद्ध बनाना चाहिए, ये भगवान के विभिन्न लीलाओं, उपदेश, आदेश, स्वरूप, इन सबका स्मरण करके फिर हमारा मन प्रयास करेंगे तब जीत पाएंगे। कई बार सुना जाता है कि मन को जीतना बहुत ही कठिन है, कहते हैं कि मन को वश में लाना बहुत ही कठिन है, मन को जीतना बहुत ही कठिन है। कठिन है जरूर, कहते कि भाई गीता में भी भगवान को अर्जुन ने क्या कहा, चंचल है मन कृष्ण, ये मन तो इतना चंचल है कि वायु को वश में ला सकते हैं, मन को जीतने वश में लाना उससे भी ज्यादा कठिन है। अगर किसी दिन आंधी हो, रामा को कहें वायु को वश में लाओ, कंट्रोल कर, आप कर सकोगे नहीं कर सकोगे। पर अर्जुन ने कहा ये तो मन तो उससे भी ज्यादा कठिन है वश में लाना, तो आप कहोगे कि जब अर्जुन कहते हैं कि कठिन है तो हमारे जैसे तुच्छ व्यक्तियों का क्या क्या होंगे। तो भगवान ने कहा है प्रयास करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। भगवान के भगवद गीता में हमें ये उपदेश भी देते हैं कि मेरे भक्तों में उनमें जो कमी भी होगी उसे मैं दूर कर देता हूं, पर ये अवश्य है कि श्रद्धा के साथ उनके शरणागत हों। तो ये हमने इसलिए कहा ये बताने के लिए कि अगर हम प्रयास करेंगे भगवान के शरणागत होने के लिए, तो अगर हमारे कोई योग्यता नहीं भी हो तो योग्यता अपने अपने साथ हो जाएगी। भगवान हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, जब वो देखते हैं कि ये भक्त प्रयास कर रहा है मुझे समझने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए, तो जो अज्ञानता है, अज्ञानता के क्या लक्षण, हम सोचते हैं कि शरीर ही हमारा स्वरूप है, हम सोचते हैं ये शरीर का उपयोग करना चाहिए किस लिए, भौतिक सुख सुविधा इंद्रिय तृप्ति के लिए, हम सोचते हैं ये ऐश्वर्य हमारा है, ये सब अज्ञानता के अलग अलग लक्षण है। भगवतम के तीसरे स्कंद में इन अज्ञानता के लक्षणों का वर्णन किया गया है, मृत्यु से भय, क्रोध आना, ये सोचना कि आप हर चीज के स्वामी हो, ये अनेक रूप हैं अज्ञानता के। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है मुझे समझने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए, तो मैं हृदय में जो विराजमान हूं उसकी अज्ञानता को दूर कर देता हूं ज्ञान के साथ, जैसे कि रोशनी अंधेरेपन को दूर करती है। तो अगर आप प्रयास करोगे कि आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए, तो भगवान आपने कुछ पूरी टूटियां भी होंगी कुछ चिंता की बात नहीं है, भगवान आपको योग्यता देंगे, बुद्धि देंगे जिसके द्वारा दृढ़ बन सकोगे और जिसके द्वारा आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। तो भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भौतिक गुण की आवश्यकता नहीं है, यह अवश्य नहीं है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए या आपको धनी होना चाहिए या खूबसूरत होना चाहिए या किसी और प्रकार का गुण भौतिक गुण होना चाहिए, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर आप हृदय में श्रद्धा रखोगे, और ये श्रद्धा कैसे बढ़ती है, साधु संघ के साथ, जैसे कि आदम में थोड़ी भावना प्रकट होती है क्या, या भगवान का स्मरण कर। गीता में भगवान क्या कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपहानम चा, अपहानम और स्मृति, स्मृति का अर्थ है भगवान का स्मरण करना, अपहाना मतलब भगवान को भूलना। तो भगवान को स्मरण करने की योग्यता भी उनसे ही आती है, और जो व्यक्ति नास्तिक बनते हैं भगवान को भूलते हैं वो योग्यता भी उनसे ही आती है। तो भगवान जब देखते हैं कि इस व्यक्ति में ये भावना है, श्रद्धा है कि वो किसी प्रकार से जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, तो भगवान उस ऐसा प्रबंध करते हैं कि वो व्यक्ति भक्तों के संबंध में आ जाए। जैसे आप सब अगर सोचने का प्रयास करो कि आपका परिचय कैसे हुआ इस काम के भक्तों के द्वारा, तो आप ये देखोगे कि किसी न किसी समय आपके मन में आध्यात्मिक जागृति आरंभ हो रही थी, है ना। तो जैसे आपके हृदय में ये जागृति आरंभ हो रही थी, भगवान ने ऐसी सुविधा बनाई कि आपके हाथ में एक ग्रंथ पहुंच गया, या आप किसी को मिले जिसने आपको ये कहा चलो दर्शन के लिए चलो मंदिर या चलो मिलने के लिए, ऐसी कुछ भावना थी तो भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई कि आपके हृदय में हंसते हंसते भक्तों की संगत आपको प्राप्त हुई। और जितना हम भक्तों की संगत का लाभ उठाएंगे उतना ही भक्ति की जो भावना है वो ज्यादा पक्की बनेगी, ज्यादा देर बनेगी उतना ही बढ़ेगी। तो जो व्यक्ति भगवान का स्मरण कर रहे हैं वो सुविधा भी भगवान के द्वारा प्राप्त होती है, और जो भगवान को भूल रहे हैं, भगवान जब देखते हैं कि इस व्यक्ति में बिल्कुल इच्छा नहीं है उनकी शिक्षा को स्वीकार करने के लिए, नास्तिक बनना चाहता है व्यक्ति, तो फिर उस प्रकार का वातावरण प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा वो व्यक्ति भगवान का स्मरण कर ही नहीं पाए। तो चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक होशियार माली जो है अपने बगीचे की देखभाल बड़े सावधानी के साथ करता है, बीज को लगाता है, फिर बीज को उगाने के लिए क्या करता है, रोज पानी डालता है ना। तो उसी प्रकार भक्तों की संगत के द्वारा भक्ति का जो बीज है हृदय में स्थापित होता है, पर ये बीज को उगाना है। भक्तों की संगत के द्वारा आपको ये पता लगता है कि जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति का क्या साधन है, ठीक है। पर केवल उतना ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है। जैसे भारत में आपको अनेक व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने पूरे शास्त्रों को कंठस्थ किया हुआ है, हमने कई बार देखा है गीता भगवतम कईयों के हृदय में कंठस्थ है भारत में, पर वही व्यक्ति भी बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और गंदी चीजें भी करते हैं वगैरह। तो केवल ज्ञान प्राप्त करना और उसका उपयोग नहीं करना उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए कहा गया है वेद शास्त्र का संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये तीन शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों द्वारा हमें ये पता लगता है क्या हमारे परम भगवान से क्या संबंध है। जैसे कि साधारण समाज में माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे इन सबसे हमारा अलग अलग संबंध है, तो हमारे परम भगवान से क्या संबंध है। अक्सर तो हम ये सोचते हैं कि हमारा भगवान से ये संबंध है कि जो हम इच्छा प्रकट करें भगवान दे दें, ठीक है ना, और अगर भगवान वो इच्छाओं को पूरा नहीं करे तो भगवान नहीं, ठीक है ना, हम नास्तिक बन जाते हैं। अक्सर तो हमारी यही हम सोचते हैं हमारे तो भगवान से यही संबंध है कि वो हमारे ऑर्डर सप्लायर जो भी हम कहें वो पूरा हो गया, ठीक है। और जब तक वो पूरा होते जाए हमारी श्रद्धा बढ़ते जाती है, जब जैसे कोई रुकावट आए हमारी श्रद्धा टूट जाती है। हम भूल जाते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कारों पर आधारित जो सुख लिखा है उससे आपको एक बूंद भी ज्यादा नहीं मिलेगा, जो उससे ज्यादा नहीं है। तो हम यही सोचते हैं कि हमारा संबंध भगवान से यही है कि जो भी हमारे कष्ट हैं हम उनको सुनाएं। खैर नास्तिक से तो यह हजार गुना ज्यादा अच्छा है, नास्तिक व्यक्ति तो किसी स्थिति में भी भगवान की शक्ति को नहीं स्वीकार करता, तो कम से कम आप ये तो मानते हो कि अगर कष्ट भी हो तो भगवान के पास ही जाए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं गीता में क्या, चार प्रकार के व्यक्ति मेरे शरणागत होते हैं, एक है जो पीड़ित है दुखी है, दूसरा जो धन चाहता है जिज्ञासु और ज्ञान के कारण। तो असली संबंध क्या है वो समझना, हाँ वो अभिधेय फिर उसका उपयोग करना प्रयोजन, ये जो शिक्षा है उसका उपयोग करना। ऐसे शिक्षा तो बहुतों के पास है इस देश में, हर व्यक्ति ये श्लोक जानता है सर्वधर्मा परिता जमान एक ना, हर व्यक्ति हर हिंदू ही भारत में जानता है। अगर आप पूछो कितने व्यक्ति इसके आधार पर चलते हैं आप उंगलियों में गिन सकोगे। तो हमें कह रहे थे कि जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस ज्ञान का उपयोग भी करता है। केवल ज्ञान रखना, उपयोग करने करना से काम नहीं चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी बता रहे थे कि ये जो भक्तिगत बीज जो हृदय में स्थापित हुआ है साधु संगत के द्वारा, अब इस बीज को हमें उगाना चाहिए। वो उगेगा कैसे? जैसे कह रहे थे बीज पर रोज पानी पिलाना पड़ेगा, तो हमें इस भक्ति के बीज को भी पानी पिलाना है, रोज रोज पिलाना पड़ेगा। जैसे कि आप रोज खाना खाते हो, हम दो तीन चार दो रोज सोते हो वगैरह, तो पानी इस बीज को पानी भी रोज पिलाना पड़ेगा। देने के साल में एक दफा, जन्माष्टमी के दिन पानी पिलाएगा, साल में दो दिन या तीन दिन रोज इसको पानी पिलाना पड़ेगा। फिर ये जो पेड़ है आस्ते आस्ते उगेगा, और फिर ये जो पेड़ है बहुत मीठे फलों को पैदा करेगा। जैसे कि पेड़ जब उगता है तो आस्ते आस्ते फल भी पैदा होते हैं। और फिर ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भी इन फलों को काटेगा खाएगा वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो आप लोगों के हृदय में भक्ति का बीज सभी स्थापित हो रहा है, पर अगर हम रोज इसे पानी नहीं पिलाएंगे तो क्या भय है? ये जो भक्ति की जो थोड़ी भावना अभी जागृत हो रही है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस भौतिक समाज में हम रहते हैं वहां तो हमारा यही अभ्यास है कि हर व्यक्ति हमें भगवान को भुलाना चाहता है। ठीक है, माता पिता मित्र वगैरह वो आपको भगवान का स्मरण तो नहीं करवाना चाहते, ये कह देंगे जरूर हम आपको भक्ति से थोड़ी रखते हैं, जाओ मंदिर महीने में एक दफा देखा मंगलवार को वगैरह, पर भगवत प्रेम को हृदय में वो नहीं बढ़ाना चाहते। और साथ में वो ये दावा भी करेंगे कि हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, है ना, तो कहेंगे हम ही तुम्हारी भलाई को जानते हैं, हम नहीं तुम्हें पा रहे, जो हम कहें वैसे ही करो। तो इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद जी एक प्रार्थना में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ही आपके शुभ चिंतक है और कोई नहीं ही है। हमें बिना बंधु नए के चेत तुम्हारा कि चेतन चेतन महाप्रभु जी ही तुम्हारे शुभ चिंतक है और कोई नहीं है। सब व्यक्ति दावा जरूर करेंगे कि हम हमारी शुभ चिंतक है, हम तुम्हारी भलाई जानते हैं, पर केवल भगवान उनके शुद्ध भक्त वो ही है आपके शुभ चिंतक। इसलिए कई दफा प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण बंध भावित होने का क्या अर्थ है, ये स्वीकार करना एक, पर भगवान हर चीज के स्वामी है, वो ही हर चीज के भोक्ता है, वो ही हमारे शुभ चिंतक है। जब आप ये समझ आओ कि वो ही हमारे शुभ चिंतक है, फिर आप उनकी शिक्षा को बिना शंका के स्वीकार करोगे। ठीक है ना, जैसे कि छोटा बच्चा वो जानता है कि माता पिता उसके शुभ चिंतक है, तो हर चीज करने से पहले पूछता है ये मैं करूं ये करूं ये करूं, और वो कहते हैं करो तो फिर वो करते हैं, वो कहे नहीं करो तो एकदम नहीं करो। तो ये विश्वास हृदय में स्थापित होना चाहिए क्या कि परम भगवान उनके प्रति निधि वो ही हमारे शुभ चिंतक है, और उनका जो उनकी जो शिक्षा है आदेश है वही है क्या हमारे आध्यात्मिक भलाई के लिए। तो भक्ति के बीज को अगर आप रोज पानी नहीं पिलाओगे तो जो बीज जो पेड़ जो है आस्ते आस्ते सूख जाएगा। तो पानी पिलाते हैं हम कैसे, एक श्रवणम कीर्तनम के द्वारा। तो चाहे हम विद्यार्थी हो, हाँ, या व्यापारी हो, या घर में कार्य करते हो, हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें रोज पानी पिलाने का प्रयास करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम जप माला करना चाहिए। इससे भगवान की संगति प्राप्त होगी, भक्ति का पेड़ भी आस्ते आस्ते बढ़ेगा। जितनी श्रद्धा के साथ अब भगवान के शरणागत होने का प्रयास करोगे उतनी ही मात्रा में भगवान आपको बुद्धि देंगे। ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल रुचि प्रकट नहीं करें और भगवान ही हमें सब प्रकार की बुद्धि दें, ये तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। भगवान अंतर्यामी है, साक्षी है, समझ जाते हैं कि कितनी श्रद्धा से ये व्यक्ति मेरे शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि जहां हो वहां ही रहो पर अपनी चेतना को बदलो। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहले गए तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में बहुत सरल शब्द में यही लोगों को समझाते थे कि कृष्णा भावना भावित होने का क्या अर्थ है, अपनी चेतना बदलो। ये समझो जैसे कि इस श्लोक में बताया जा रहा है, श्लोक के तात्पर्य में, कि ऐश्वर्य वगैरह का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। तो चेतना बदलने का अर्थ यह है, ये सोचना कि हर हम जहां हर चीज के स्वामी है के बजाय परम भगवान हर चीज के स्वामी है, हमें हर चीज का उपयोग करना चाहिए उनकी सेवा में। ये बुद्धि आएगी अगर आप हरि नाम का उच्चारण करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, भक्तों की संगत का लाभ उठाओ, तो जितना भी आपको अवसर प्राप्त हो उसका लाभ उठाओ। इस प्रकार आप अपने आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन कर पाओगे। तो इस श्लोक का संक्षेप में यहां हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है इन श्लोकों के द्वारा अपने शोक को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि परम भगवान अपने दिव्य धाम में लौट गए हैं। तो जिस प्रकार अर्जुन भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हमें भी प्रयास करना चाहिए भगवान का सदा स्मरण करने के लिए। और जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो मन गंदे विचारों से खुद ही दूर रहेगा। जैसे कि अगर इस प्याले में ग्लास में पानी भरा हुआ है तो अंदर और दूध नहीं डाल सकते, पर अगर आपकी आधा खाली है फिर आप दूध डाल सकते हो। तो अगर आपके मन के द्वारा भगवान का स्मरण कर रहे हो फिर आपका मन आपका साथ देगा आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण।